نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے بیان کرتا ہے اللہ ایک مثال کلمہ طیبہ کی کیا ہے وہ کا شجرت ان طیبہ جیسے ایک طیب درخت پاکیزہ درخت کیا ہے وہ درخت اور اس کی کیفیت کیسی ہے اسلحہ ثابتن اس کی جڑ بڑی مضبوط ہے جمی بھی ٹھکی بھی اور وہ فرعہا فی السما اور اس کی شاخیں ہیں آسمان میں یعنی وہ درخت ایسا ہے کہ جو ڈیپ روٹڈ بھی ہے اور اس کی برانچز اتنی پھیلی ہوئی ہیں اور اتنا اونچا ہے کہ آسمان سے باتیں کرتا دکھتا ہے. اگلی خوبی لکھیں 1 2 3 کر کے لکھیں گے تو 6 7 چیزیں جمع ہوں گی. نیکسٹ اس کی خوبی کیا ہے توتی اکولہا کل حین بإذن ربها وہ دیتا ہے اپنا پھل ہر موسم میں. حین سال کو بھی کہتے ہیں نا ایور گرین ہے پورا سال سیزنل نہیں ہے گرمی سردی نہیں بلکہ وہ ہر وقت پھل دیتا ہے. لیکن یہ پھل آتا کب ہے اور کس وجہ سے آتا ہے بإذن ربها اپنے رب کے حکم سے یعنی یہ درخت اپنے مالک کی بات سنتا ہے رب جو کہتا جاتا ہے وہ کرتا جاتا ہے یہ بس بات ختم ہو گئی. وَيَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ اور بیان کرتا ہے اللہ مثال کو کس کے لیے ایک نہیں بہت ساری مثالیں لِلنَّاس لوگوں کے لیے ناس میں مسلمان نہیں ہے صرف یعنی کہ لِلَّذِينَ آمَنُوا ہیومینٹی اور مینکائنڈ اللہ انسانوں کو یہ مثالیں دیتا ہے کیوں لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. اس آیت کے ساتھ جو واقعات آتے ہیں وہ آپ کو یاد ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اپنے صحابہ سے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا یعنی آپ نے کچھ ایسی ڈسکرپشن دی کہ صحابہ کو پتہ بھی لگ گیا ہوگا لیکن وہ بولتے نہیں تھے اس وجہ سے کہ کہیں غلط نہ بول دیں خاموش رہے. لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہ جس موقع پہ وہاں موجود تھے اور ابھی ینگ ایج کے لڑکے تو انہوں نے بعد میں اپنے باپ کو کہا کہ اللہ کے نبی نے جو جواب بتایا تھا مجھے بھی وہی بتا تھا پر میں اس لیے نہیں بولا کہ وہاں تو آپ سب بڑے بڑے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے مناسب نہیں سمجھا. تو اس وقت حضرت عمر نے کہا تھا اور میں کہوں گی کہ اللہ کرے آج ہماری نسلیں بھی اتنی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سمجھنے والی بن جائیں کہ ہم ان کو بھی یہی کہہ سکیں. اور انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر تو وہاں یہ بات بتا دیتا تو مجھے دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ پیارا ہوتا یعنی کہ میرے بچے کو اللہ نے اتنا فہم دیا. لیکن اس ساری بات کو آگے بڑھا لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجور کا درخت ہے اور کھجور کا درخت ٹری آف ایمان ہے. آج ہم اس کی تفسیر نہیں کر رہے لیکن میں آپ کو جو چیز بتانا چاہتی ہوں آپ دیکھیے کہ کبھی بھی آپ نے کوئی درخت لگایا ہو یا آپ کو پلانٹنگ کا شوق ہو چلیں یہ تصور میں لائیے کوئی آپ کو ایک پودا دیتا ہے کہ آپ اس کی دیکھ بھال کریں. اف سم ون گیوز یو اے پلان ٹو ٹیک کیئر آف اٹ ہاؤ ڈو یو تھنک یو ول ڈو آپ کسی پودے کی حفاظت کیسے کریں گے کیا آپ اس پودے کو ہر ممکن طریقے سے ٹیک کیئر نہیں کریں گے ایسے ہی ہے نا. کیا آپ اس پودے کو فروٹ فل بنانے کے لیے اپنی ساری ایفرٹس نہیں لگائیں گے کیا آپ اس کو وہ ماحول وہ ایٹماسفیئر وہ کھاد وہ پانی وہ روشنی نہیں دیں گے جو اس کے لیے ضروری ہے ایسے ہی ہے نا. بس اسی کو لے لیجئے. اللہ نے آپ کو مجھے ایک پودا دیا ہے ایمان کا پودا. جب ایمان کا پودا صحیح طریقے سے صحیح جگہ پہ لگا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس پودے پہ بہار بھی رہتی ہے اور پھل بھی آتا ہے. ذرا سا وہ پروسیس ذہن میں رکھ لیجئے جو سٹیپس ہوتے ہیں. سب سے پہلے ایک بیج جو آپ زمین میں ڈالتے ہیں وہ بیج نہ ہو زمین بہت اچھی ہو تو بھی کچھ نہیں نکلتا موسم ٹھیک نہ ہو جس میں بیج ڈالا تو بھی نہیں نکلے گا. چلیے آئیڈیل سچویشن کیا ہے دا بیسٹ کائنڈ آف سیڈ نمبر 1 بیج اچھا جو آپ نے ڈالنا چاہا. دوسری بات زمین بڑی اچھی ہے فرٹائل سوائل. بیج ہے اللہ کی محبت معرفت لو آف اللہ. زمین ہے آپ کا دل بندہ مومن کا دل. پہلے تو وہ کفر کا دل ہوتا ہے کافر کا ہوتا ہے جب اللہ کی محبت ڈلتی جاتی ہے تو وہاں سے اسلام گرو کرنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے کہ جب بیج اس میں ڈال دیا تو چھپا دیا कोई बीज शीशे के कंटेनर में आप रख दें, 10 साल भी पड़ा रहेगा लेकिन उसमें से पौधा नहीं निकलेगा। तो ये बीज हमारी नियत, हमारा इखलास है। ईमान का नुक्ता आगाज़ दिल में अल्लाह की मोहब्बत के डलने से होता है। जब वो बीज अंदर जाता है, कुछ दिन तक उसको दबा के रखना चाहिए। पकते खाने को बार बार खोलें तो उसका टेस्ट ख़त्म हो जाता है। इस तरह पौधे को, बीज को मिट्टी में डालने के बाद अगर थोड़े दिन बाद जा जा के खोल के मिट्टी को हिला के देखें कहाँ गया कहाँ गया, तो वो बीज ज़ाया हो जाएगा। इसी तरह जब आपके मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत का बीज डले ना, तो शुरू में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं देना चाहिए। अपनी नई नई नेकियों को छुपाएं। कोई भी है, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, हिफ्ज़ कर रहे हैं, सदका कर रहे हैं और या कुछ भी, जब हम बहुत जल्दी अपने नेकियों के कामों को बाहर खोल के दिखाने लग जाते हैं ना, तो नंबर एक हवा लग जाती है, दूसरी बात है नज़र लग जाती है, तीसरी बात याद रखिएगा मुखालफत शुरू हो जाती है। और मुखालफत अभी आप बर्दाश्त कर नहीं सकते, सॉरी, अभी आपका वो ईमान नहीं है कि आप मुखालफत के बावजूद उस ज़मीन में ठोके रहें, तो डर क्या होता है कि वो फिर पौधा आगे नहीं बढ़ेगा। जब आपने कुरान पढ़ा या पढ़ेंगे, आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत का बीज डलेगा। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह होगा आपके साथ। जितना ईमान अंदर रहता है ना, उतनी ताकत बनता है। जैसे आपने कभी गैसी गुब्बारा देखा हो, तो उसके अंदर जब गैस भरी जाती है ना, तो उसमें एक ताकत आ जाती है, एकदम छोड़ें छत पे चला जाएगा। लेकिन एक हल्की सी सुई के साथ रपच्चर कर दें उसको, तो सब किया किराया काम नीचे आ जाएगा। इसी तरह से पहले सबसे जिस चीज़ पे आपने अपने और दूसरों के काम करना है, वो ईमान है। और ईमान को रूट्स पे रखिए। जब नया नया बीज डलता है और फिर उसके बाद क्या होता है, कोम्पल निकलती है। कुछ कुछ दिन के बाद आप जाके देखते हैं और एकदम चीख मारते हैं, आ पौधा निकल गया। वो लाइट सी हल्की सी पतली सी झूमती झामती और उस पर एक बिल्कुल कच्चा सा पत्ता लगा होता है, आप कहते हैं देखो मेरा बीज फूट गया। इसी तरह से जब दिल में ईमान आता है, शुरू में बहुत कच्चा होता है, बहुत थोड़ा होता है, सारे दोस्तों फ्रेंड्स अपने प्यारों कजन्स में इंसान अजनबी लगने लगता है, एक नई दुनिया आपके अंदर आने लगती है। और उसके बाद जब फिर हल्के हल्के उसका इजहार शुरू होता है, यहाँ ज़रा सा सोचिए, बड़ी खूबसूरत मिसाल मैंने कई दफ़ा दी है, आज आपका भी हक है कि आपको दूँ। मिट्टी में बीज डालने से पहले मिट्टी को क्या करता है किसान, गोडी करता है, प्लॉक करता है ना। सख्त ज़मीन में जाकर बीज डाल दें तो नहीं होगा, हल चलाना जिसको कहते हैं, आप तो उसमें मशीनों से हेल्प ली जाती है ना। पहले दौर में लोग जानवर के पीछे एक लोहे का डंडा सा बांध के, जिसके नीचे अंकड़े से बड़े बड़े ऐसे कील या हुक्स लगे होते थे, तो वो ज़मीन पे चिलाते हैं ना, फिर ज़मीन नरम होती थी, फिर बीज डालते हैं ना। मेरा आपसे एक सवाल है, वही ज़मीन है ना जिसमें बीज डालने के लिए इंसान को मशीनों से भी मदद लेनी पड़ी, लेकिन वो नन्ना सा बीज अंदर गया, उसमें कहाँ से इतनी ताकत आ गई कि वो उसी ज़मीन को अपनी कमज़ोरी के साथ ही फाड़ के ऊपर आ गया। बात समझ है? जब बीज को अंदर डालने के लिए ज़मीन को नरम किया था, तो जवाब है कि जब ज़मीन से फिर कुछ निकालना है तो भी तो नरम करना पड़ेगा ना। ये चीज़ है पावर ऑफ ईमान। एक बीज के अंदर इतनी ताकत मौजूद है कि वो सख्त मिट्टी को फाड़ कर उसमें से इजहार मांगता है, ईमान भी इजहार मांगता है। ये कभी हो नहीं सकता कि आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत का बीज डल चुका हो, आपको नबी सल्लम से प्यार हो चुका हो और आपका अकीदा आखरत दुरुस्त हो चुका हो, और उसके बावजूद आप इजहार ना करें। फिर वो सारे जुमले काट दीजिए जो हमारे इंडो पाक कल्चर में मारूफ हैं, अंदर से बड़ा नेक है, नज़र नहीं आता, वो दिल के बड़े अच्छे हैं, वो अमल नहीं कर पाते, ये नहीं हो सकता। ईमान इजहार चाहता है। इसकी मिसाल कुरान में 7वें पारे की पहली आयत है, वइज़ा समीउ मा उन्ज़िला इलर रसूली। हबशा के बादशाह और उसके 70 साथी जब अल्लाह के नबी का कलाम सुनते हैं तो उनकी आंखें बह निकलती हैं। क्यों? मिम्मा राफू मिनल हक। और ये बात आपको मिलती है सूरह तहरीम में, एक कमज़ोर सी औरत बीबी आसिया की तरफ से, फिरौन जैसे अमीर कबीर शोहर की बीवी और जालिम और जाबिर तरीन हुक्मरान की बीवी होना भी बीबी आसिया को इजहार से नहीं रोक सका। मौत की धमकी क्या देते हो, जल्दी करो क्योंकि रब्बिब निली इंदा का बैतन फिल जन्ना। ऐ मेरे रब, मैं तो जन्नत में तेरे बिल्कुल करीब ही रहना चाहती हूँ। तो ये बात नोट कीजिएगा कि पोटेंशियल अगर है ना आपके अंदर ईमान का, तो अमल ज़रूर आएगा। पूरा कुरान पढ़ जाए अमल ना आए, या उतना ना आए जितना आना चाहिए, तो दो में से एक बात होगी, अभी अंदर आपके वो ताकत नहीं है। हमारे ऊपर सबसे बड़ा हमला हमारे अपने नफ्स का होता है। वी नीड टू स्ट्रगल फॉर दैट। हम जब अपने अंदर को पुख्ता कर लेते हैं ना, तो वो कहते हैं ना, जो हो जौके यकीन पैदा, तो कट जाती हैं जंजीरें। ये ज़मीन की मट्टी खुद ब खुद हटनी शुरू हो जाती है जब पौधे को इस बात का यकीन आ जाता है कि मैंने निकलना है। इस सवाल में हर उस सिस्टर का जवाब है जो कहती हैं, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ लेकिन मेरे हालात ठीक नहीं है, मेरे माहौल ख़राब है। नोट करें, कच्चे पौधे को सर्वाइवल के लिए एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसे बीज और मट्टी की मिसाल दी है ना हमने, अगली चीज़ क्या चाहिए होती है पौधे को पनपने के लिए? ऑक्सीजन, पानी, माहौल अच्छा हो, ऐसे ही है ना। अब ये सब कुछ चाहिए उस पौधे को, कच्चे कच्चे पौधे को माहौल मुतासिर करता है। फिर सोचिए, डिस्ट्रैक्ट ना हो, नया नया ईमान जब आता है, नया नया अल्लाह का हुक्म मिलता है, नई नई बात समझ आती है ना, तो आप अपने इर्द गिर्द वालों का मुंह देख रहे होते हैं, NOC सर्टिफिकेट मांग रहे होते हैं, आई विल डू दिस थिंग बट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। मैं ये कर लूँ मियाँ साहब, आपको कोई इस पे ऑब्जेक्शन तो नहीं? और अपनी दोस्तों और फैमिली से हम इजाज़तनामे तलब कर रहे होते हैं कि अगर मैं अल्लाह के हुक्मों पे अमल करती जाऊँ तो तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं होगे? लेकिन एक वक्त आता है जब आप मजबूत दरख्त बन जाते हैं ना, तो फिर आपका सर्वाइवल माहौल पे नहीं रहता, फिर आप अपनी रूट्स पे खड़े होंगे। इसमें दो तरह के लोगों को एड्रेस करूंगी, जिनकी ज़िंदगी में भी नया नया कुरान आया है, अभी पढ़ा ही नहीं है, चलें या पढ़ना शुरू किए हैं, ये तो वाकई थोड़े से कमज़ोर होंगे अपने माहौल के आगे। कोई बात नहीं, इट टेक्स टाइम। या एक जुमला लिख लीजिए, ईमान का ये पौधा बढ़ते बढ़ते ही बढ़ता है, एक दिन में नहीं उगता, साल हर साल लग जाते हैं। आप एक छोटी सी बेल लगाएं, सोचिए अल्लाह ने बेल की मिसाल क्यों नहीं दी? क्या कहते हैं बेल्स को इंग्लिश में, जो ज़मीन पे होती हैं, क्रीपर्स? अल्लाह ने इस जगह दरख्त की बजाय बेल की मिसाल क्यों नहीं दी? सिंपल सा जवाब दूं, बेल फैलती बहुत जल्दी है, दिनों में फैलती है, लेकिन पीछे एक डंडी है सिर्फ, एक डंडी काट दें सारी बेल मुरझा जाएगी। इसके बरक्स ईमान का दरख्त एक है, लगता सालों में है, लग जाए तो काटने वाले को समझ आ जाती है। ईमान दरख्त की तरह बढ़ना चाहिए, बेल की तरह नहीं। बाज़ लोग फौरन भागते, हो ये हो गया, ये करे, जज्बात, इमोशनल, और उसका नुकसान क्या होता है कि हम दूसरों की नज़र में आ जाते हैं, लेकिन फिर ज़रा सी मुखालफत हुई हम दबके बैठ गए, हम कहते नहीं मेरे से नहीं ये बर्दाश्त, मैं अपने शौहर की आंखों में ये बेगानगी नहीं देख सकती, और मैं अपनी दोस्तों का ये मूड नहीं देख सकती, और मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को नाराज़ नहीं कर सकती। एक औरत थी, मैं मिसाल इसलिए देती हूँ कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ही तो लेने आए हैं, ठीक है साहबा की बात तो पीछे करें, वो निकाब करती थी, उसने समझ के शौर से किया, 3-4 साल मैंने भी उसको देखा, फिर एकदम मैंने अचानक देखा तो निकाब में नहीं थी। इस दौरान फ़र्क एक ही आया था कि उसको बेबी मिल गया, काफ़ी साल से नहीं था बच्चा उसके पास, थे बच्चे बड़े थे लेकिन इसके पास छोटा बेबी नहीं था। तो मैंने कहा क्या हुआ? अब सुनिए जुमला, अब वो कोई भी थी, अल्लाह उसको ईमान का दरख्त बनाकर बराबर कर दे, या आप में से मेरे में से किसी की भी बात हो सकती है, ऐसी बातों में खुद ही बता रही थी, कहने लगी ये मेरा बेबी है ना, जब मैं इसको उठाती तो ये मेरा निकाब उतारता, ही डोंट लाइक माई निकाब, तो मैंने इसकी वजह से करना ही छोड़ दिया। ये है पहली गलती, अल्लाह को छोड़कर किसी बंदे को अगर आप ऐसा मुकाम दे देंगे, और आज इतनी बड़ी आजमाइश में उस बच्चे की वजह से, अल्लाह ना करे किसी पे आए, कोई बंदा अपने बच्चों और औलाद का नाम लेकर दीन से रुकता है ना, अल्लाह दुनिया में फिर उसको वापस लाता है इंशाल्लाह, बड़ी आजमाइशों में डालकर। तो याद रखिएगा, किसी का हक नहीं है ये दुनिया में। मैं निकाब की बात नहीं कर रही इस वक्त, कल भी हमसे किसी ने एक सवाल किया, हम रास्ते में ट्रैवलिंग में एक जगह रुके कन्वीनियंस स्टोर से, तो वहाँ एक यंग लड़की थी बड़ी अच्छी, तो वो हम में से सारे साथियों को देख रही थी, तो हम में से हर एक का गेटअप फर्क होता है ना, हर एक का ही होता है, तो मुझे कहने लगी वाई यू कवर एंड द अदर्स नॉट, अब ये उसका सवाल था। अब एक बात है मैं उसको फिक पढ़ाती, इमाम शाफी का ये कॉल, इमाम मालिक ये कहते, इमाम अबू हनीफा का ये, मैंने उसे कहा ओके होल्ड ऑन, वो कस्टमर कोई आया, मैंने कहा इसको फारिग कर ले, मैंने कहा इफ़ यू आर अ मॉम यू हैव 3 किड्स ओके, तुम्हारा एक बच्चा है जो तुम्हारी हर बात मानने के लिए पहले से तैयार है, दूसरा कुछ मानता है कुछ नहीं मानता, और तीसरा बिल्कुल नहीं मानता, तो तुम क्या करोगी, किसको अच्छा कहोगी? कहती ऑफ कोर्स फर्स्ट वन। तो मैंने कहा दीज आर दी स्टेप्स, अल्लाह सुभान तआला से इट्स ओके, इट्स बेटर, इट्स बेस्ट, सम पीपल आर ऑन द बेस्ट लेवल, सम आर ऑन द गुड बेटर। कहती दैट मीन यू आर ऑन द बेस्ट लेवल, मैं कह नो यू डिडंट सी बेटर पीपल देन मी, आई एम स्ट्रगलिंग, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। अब आप देखिए, इससे उसको ये तो पता चल गया ना कि मुस्लिम में कॉन्ट्राडिक्शन किस बात का है। तो अगर मैं वहाँ उसको कहती ये हराम ये हलाल और ये कोई इशू ही नहीं था, मैं कह लीव इट, इट्स नॉट अ बिग डील। उसके लिए ये बिग डील नहीं थी, मेरे लिए तो बहुत बिग डील है। कल आपके आपने उनको कहा था इट्स नॉट अ बिग डील, तो फिर आप भी निकाब उतार के खोल के मुँह में फिरे। इट्स अ बिग डील फॉर मी बिकॉज आई वॉन्ट टू बी द मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट ऑफ माई अल्लाह सुबहान तआला। और मुझे बात समझ आ गई है, दूसरों को भी नहीं आई, आ जाएगी उनको भी। इट विल टेक टाइम। तो याद रखिए, ईमान ग्रो होता है थोड़े थोड़े, हर साल आपको तो दरख्त के इर्द गिर्द एक साइकिल बनता है। जिन्होंने अभी बॉटनी पढ़ी है, मेरा फेवरेट टॉपिक था एक वक्त था, मुझे दरख्तों से बहुत प्यार है, बिलीव मी। मुझे बच्चे लगते हैं, मेरे कहते हैं इनको लिपटूँ, प्यार करूँ, इनको किस करूँ। और अल्लाह ने मुझे दरख्त दिखाए भी बहुत है, हर रंग हर स्टाइल का। मैं किसी भी इलाके में जाऊँ, मैं सबसे पहले वहाँ के दरख्तों के पत्ते स्टाइल देखती हूँ, क्योंकि अलम तरा कई फ़दा रब अल्लाह मसलन कली मतन तयबा। वापस आ जाए उस मिसाल पे, पहले ईमान आया। अगर अंदर ईमान स्ट्रांग होगा, महीनों का फासला तय हो जाएगा एक दिन में। मेरी भी पिछली मिसाल से आपके, इट विल टेक टाइम। ओके, अभी तो 1 साल हुआ कुरान पढ़े हुए, 10 साल बाद वी विल ओबे एवरीथिंग, ये भी नहीं होगा। ये साथ साथ ग्रो होता है। मैंने अपने सालों में, पिछलों में देखा है, कुछ स्टूडेंट्स में दूसरे पारे में चेंज आ जाती है, कुछ में तीसरे में, कुछ पाँचवें पे, और कुछ 5 बार पढ़ के भी नहीं अमल कर पाते पूरा। ये उनकी चॉइस है। लाइक रहा हाफिद्दीन, हक ये है जिसको मानना है मान ले, जिसको जितना ऊंचा जाना है ना वो उतनी अल्लाह की बात मानेगा। असल बात है इजहार। मिसाल देती हूँ आपको, ये जो शुरू में दी ना कि कॉम्पल जमीन से निकलती है तो कैसे अपना सर उठा के ऊपर जाती है। एक शख्स थे तो उनका घर था काफी पुराना, उनको फील हुआ कि जो घर की फाउंडेशन है ना दीवार में इधर, उसमें क्रैक आने लग गया। खैर, 1-2 साल तो बर्दाश्त किया, लेकिन उन्होंने इंजीनियर्स को बुलाया कि कम एंड लुक एट माई होम। जब उन्होंने आकर देखा और सारा इधर बाहर अंदर से देखा, तो व्हाट दे फाउंड, बड़ी हैरत की बात है। उन्होंने कहा, बाहर जैसे कि आप हमारे बाहर दरख्त दिख रहे हैं ना, बाहर एक दरख्त था उनके घर के मेन पे वह। उन्होंने कहा कि ये दरख्त है ना, जब ये घर बना था ये दरख्त तब भी था, अब वक्त के साथ उस दरख्त की रूट्स बड़ी हो के अब वो इस वक्त आके तुम्हारे इस घर की फाउंडेशन को टच कर रही है। और ये जो घर में क्रैक्स आ रहे हैं ना, वो जड़ मुस्तकिल भर रही है, और अगर तुमने इस दरख्त को ना काटा तो ये घर गिर जाएगा। असलुहा साबितुन, असल साबित कीजिए अपनी। असल कहते हैं रूट को, जड़ पक्की करें। आप अगर कुछ करना चाहते हैं, बाहर की लेपा पोती मत करें। ऊपर के रंग डालने और फाउंडेशन और पाउडर लगाने से आप खूबसूरत वक्ती तौर पे दिखेंगे, बट रियल हेल्थ इज योर इनसाइड हेल्थ। शाइनिंग ग्लोइंग फेसेस, रिफ्रेशमेंट अंदर से आता है। हम बाज़ दफ़ा बहुत सारी ज़ाहरी चीज़ों को ऊपर देख कर कहते हैं ये है ईमान, आपके अंदर इतना ईमान हो आप खड़े ही ना रह सकें, अल्लाह को कम सुन के ढह पड़े। ईमान ढह पड़ने का नाम है सरेंडर। इस क़ाल लहु रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। मिसाल देती हूँ, मैं आप में से ये कह दूँ मुझे पानी चाहिए, क्या आप सारे उठ के नहीं भागेंगे? आप अपने बच्चों से क्या चाहते हैं? जो कहें वो करें। और आपके बेटा पानी देना, नहीं मामा इट्स नॉट अ बिग डील, पानी तो बड़ी बात नहीं है, आपने कौन सा मुझसे दूध मांगा था, जूस मांगा था? आप कहेंगे नो, दिस इज़ नॉट द मैटर, मैटर ये कि आई एम योर मॉम एंड आई टोल्ड यू डू समथिंग। तो जब मैंने तुम्हें कुछ कहा तो तुम बैठे रहे, हमारी बड़ी स्लैंग लैंग्वेज में कहते हैं ढीठ बन के बैठे रहे हो। वल्लाही आज हम मुसलमान अल्लाह के बहुत सारे हुक्मों पर ढीठ बन के बैठे हुए हैं और टस से मस नहीं होते। कितना बुरा लगता है कोई आपको कहे और आप उठे ना, मैं आपसे को ना सबक सुनाए और आप आगे से ना बोले ना, ना सुनाए तो मैं इंसल्ट फील करूंगी। इसलिए कहते हैं जब टीचर कहते हैं ना कुछ सुनाओ और आगे से ना सुनाए तो उसकी बेइज्जती करते हैं आप। हम इंसानों के साथ तो ये बातें समझते हैं, इब्राहिम को ये बात सिर्फ समझ आई थी इस क़ाल लहु रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। हम होते तो सोचों में पड़े होते, अच्छा करूँ ना करूँ। कितनी मिसालें हैं इब्राहिम की ज़िंदगी में, हर बात पे ओके अल्लाह जी ठीक है जो आपके, इवन ख्वाब के इशारों को वो मान रहे हैं। हम हकीकत की बातों को कहते नहीं, फिर हम फतवा ढूंढने जाते हैं, कोई बंदा इसके ऑपोजिट फतवा दे, नहीं नहीं ये फ़र्ज़ नहीं, ये सुन्नत नहीं, ये नफिल, ये मुस्तहब, ये ऑब्लिगेटरी नॉन ऑब्लिगेटरी, ये सुन्नत है मौकदा गैर मौक, ये सारी टर्म्स मोमिन को नहीं आती, ये फिक कह जाइए कहीं और से पढ़िए। ईमान का सफ़र है और ईमान की कोई फिक नहीं होती, याद रखें। फिक दिल की अगर होगी ना तो उसमें तवक्कुल अलहुब अलबुस होगा। अभी परसों का आखिरी लेक्चर कल्बे सलीम पे किया है ना हमने, सुनिए उसकी रिकॉर्डिंग जिन्होंने नहीं सुनी। उसमें 11 पॉइंट दिए थे कल्बे सलीम कौन है, और 3 अलामतें सिर्फ बताई थी कि नहीं है आप तो क्या है आपकी ज़िंदगी में, हालांकि वो भी 8-9 थी, टाइम उतना ही मिला। क्या पता चला आपको? अल्लाह का हुक्म सुन के एप्स एंड बर्ड्स नहीं, प्रोज एंड कॉन्स नहीं, ये नहीं, ये कर लूँ तो सवाब, बेटे की गर्दन पे छुरी चला दी तो क्या फ़ायदा, ना करूँगा तो क्या होगा, अल्लाह कितना को नाराज़ होगा, अच्छा अगले रमज़ान में फिर उसको मना लूँगा, फिर उम्रा करके आऊँगी तो अल्लाह रब राज़ी, वो तो मान ही जाता है, और मरने से पहले तौबा तो कर ही लूँगी। इट्स नॉट द मैटर ऑफ ईमान, ईमान का मसला ये है कि इट्स माई ऑनर, अल्लाह ने मुझे कहा आई एम रेडी, अल्लाह जी आपने ये नेकी मेरे हिस्से में डाली, बिस्मिल्लाह 100 दफ़ा, आप उससे पूछ, उससे इजाज़त, आप ये करें वो करें, याद रखें ईमान नहीं होता। सच्चा ईमान जब अंदर आता है ना, तो आप अंदर ही अंदर पक रहे होते हैं हल्की आंच पे। मैंने अपने दिल में एक जुमला रखा हुआ है, स्लो कुकर असलुहा साबितन, स्लो कुकिंग इज़ द बेस्ट कुकिंग। अपनी नानी दादी से जाके पूछें, मट्टी की हांडी में पकाते थे, उस खाने का आज भी लज्जत आती होगी आपके बाप को जो उन्होंने अपनी माँ के हाथ से खाया होगा। आज फिर दोबारा लोग आ गए मट्टी के बर्तनों पे, स्लो कुकिंग पे, उसका टेस्ट ही और होता है। ईमान का प्रोसेस स्लोली स्लोली अंदर चलता रहता। असल जो कमी है ना आज हमारे अंदर, ईमान की कमी है, जाहिरदारी बहुत है। और आज अगर अपनी नस्लों को बचाना है तो असलुहा साबित, इस दिल की मट्टी को इस तरीके से नरम कर दीजिए कि एक दफ़ा अगर अंदर ईमान चला गया तो हटेगा नहीं। उधर एक छोटी सी कोंपल और एक दरख्त की जड़ में इतनी ताकत है कि आपके घर की दीवार हिला दे, तो आपके मेरे ईमान में इतनी ताकत नहीं है कि रिश्तेदारों से ज़रा मुख्तलिफ रविश पे चल सके, शौहर को ज़रा सा नाराज़ कर सकें, बीवी को ज़रा पीछे डाल दें कि बेगम आप मुझे प्यारी बहुत हैं पर अल्लाह का हुक्म आपसे ज़्यादा प्यार है। ये सारा दिन चलते हैं। और इस पे देखिए सूरत तौबा में 9 चीज़ें जिसमें कुछ रिश्ते और कुछ बेजान चीज़ों को सामने रख के क्या कहा, अहब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बि अम्री, कि अगर ये तुम्हें घर माल बेटे औलादे चीज़ें अल्लाह और उसके रसूल और उसके रास्ते की जिद्दोजहद से ज़्यादा प्यारी हैं तो तैयार हो जाओ, फिर अल्लाह अपना अमर लाएगा। और लिखिए मुफसरीन कहते हैं जाते अल्लाह हमरा अमरहू कह अजाबहू, फिर वो अजाब ऐसे नहीं आता, बिजलियाँ नहीं गिरती, कड़क नहीं आती, ये फिर गम पड़ते हैं, ये डिप्रेशन और स्ट्रेस और अनदेखे गम। हमने तो आपके लिए बेटा इतना कुछ किया, आपको क्या हो गया, बेटा आप क्यों बिगड़ गए, हम तो बचपन से आपको लेकर इस्लाम सिखा रहे थे, अपने आप को अल्लाह के आगे लाना है। फिर आप देखेंगे कि जब असल जमा होती है ना, असल साबित होती जाएगी, फिर ईमान तवक्कल फूटेगा उसमें से, फिर उसमें से आगे बढ़ते बढ़ते आपकी ज़िंदगी में खैर आती जाएगी। और फिर उसके बाद ये कैसे हो सकता है कि जड़ें तो हैं, नए पौधे की जड़ें बहुत छोटी होती हैं, जैसे हम बहुत सारे पौधों की जड़ें निकाल लेते हैं ना, मूली गाजर जब आप उसको प्लग करते हैं ऐसे ज़मीन से तो उसकी जड़ साथ आती है ना, कमज़ोर सी है, क्योंकि मूली बड़ी है ऊपर जड़ छोटी है। कई तो जड़ें हम खाते हैं आलू और इसी से शक्करकंदी, ये जड़ है ना वो तो मीठी है, लेकिन आप आम के दरख्त की जड़ निकाल कर तो दिखाइए, नहीं निकलेगी, ये फ़र्क है। जब असलुहा साबित होना ना, पेनिट्रेटेड डीप रूटेड अंदर 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 अंदर, और जब ईमान बिल्ला आया तो फिर तवक्कुल आएगा, फिर अदीतु बिल्लाहि रब्बन आएगा, फिर अल्लाह से प्यार होगा, अल्लाह के फैसले अच्छे होंगे, यही ईमान है। लेकिन अंदर की पुख्तगी बाहर के लिए आसानी का जरिया होती है। चलिए हो गई,